Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Purna Pragyaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Kathopanishad Shanti Pat. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंत्र देखे। परांचिखानि व्यतृणत् स्वयंभूस्तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृत्तचक्षु अमृतत्वमिच्छन् परा च कामाननुयन्ति बालास्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य पाशम् अथ धीरामृतत्वं विदित्वा ध्रुवम् अध्रुवेष्विह न प्रार्थयन्ते येन रूपं रसं गन्धम् शब्दान् स्पर्शांश्च मैथुनान् एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतत्। तो प्रथम मंत्र हम लोगों का चल रहा है, उसमें श्रुति भगवती कहती हैं कि परांचिखानी व्यतृणत् स्वयंभू। स्वयंभू जो परमात्मा है, उन्होंने ये जो पांच इंद्रियां हैं विषयों का ज्ञान देने वाली, इन्हें हिंसित कर दिया। तस्मात् परांग पश्यति नांतर आत्मन, और इसलिए ये बाहर ही देखती हैं, अंतरात्मा को नहीं देखती हैं। अब इसके विपरीत कोई ऐसा भी होता है कि धारा को उलट ले, जो बह के धारा नदी की निकलकर और समुद्र की ओर जा रही है उसको उलट के वापस ले जाए, कोई ऐसा धीर वीर होता है। तो कहा कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानम इक्षत, लेकिन कोई एक ऐसा धीर होता है आवृत्त चक्षु हो अमृतत्वम इच्छन, उसे अमृतत्व की इच्छा हो जाती है। ये दुर्लभ है, अमृतत्व की इच्छा होना यही बहुत दुर्लभ है। अमरत्व की इच्छा यह दुर्लभ है। तो इसकी इच्छा करते हुए वह आवृत्त चक्षु अर्थात इंद्रियों को रोक लेता है, आवृत्त चक्षु इंद्रियों को अंतर्मुख कर देता है। आवृत्त कल आपको सुना रहे थे निवृत्ति, तो आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन इंद्रियों को रोक लेता है अमृतत्व की इच्छा करने वाला, और प्रत्यगात्मानम ऐच्छत, और प्रत्यगात्मा को वह देख पाता है। इसमें दूसरी पंक्ति में चार बात बताई यहाँ बड़ी सुंदर साधना पक्ष से। एक तो कहा वह धीर है, धीमान है, विवेकी है। दूसरी बात कही कि वह प्रत्यगात्मा को देखता है। प्रत्यगात्मानम ऐच्छत, भगवान भाष्यकर यहाँ कहते हैं कि देखो प्रत्यगात्मा को वह देखता है अर्थात देखा यानी देखता है, देखा जो यहाँ कहा यानी देखता है। तो ये छांदस जो प्रयोग होता है वेद में, तो भविष्यति अर्थात आगे देखेगा, ऐसे भी ले सकते हो कि आगे वह अंतरात्मा को प्रत्यगात्मा को वह देखेगा। अभी वह साधक है, अभी तो वह इच्छा कर रहा है। तो कहा कि क्योंकि भूत भविष्य और वर्तमान का भेद वेद में नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि कहा वेद भगवान को यह ज्ञात है कि काल कल्पित है, हमारी बुद्धि का एक प्रोजेक्शन है, बुद्धि का एक फैलावा है काल। जब बुद्धि जागती, जब आप सो जाते हैं तब क्या काल होता है? तब काल नहीं होता। ना दिन का पता होता है ना रात का। कभी दिन में सोए होते हैं, जगते हैं तो लगता है रात को सोकर उठे हैं क्या, ऐसा भी हो जाता है। तो एक क्षण के लिए, फिर बाद में बुद्धि जब पूरी जाग जाती है तो सब कुछ लाकर खड़ा कर देती है। बुद्धि, मन, इंद्रियां, विषय, देश, काल, वस्तु सब लाकर वो खड़ा कर देती है। लेकिन उसके पहले जब हम सो रहे होते हैं तो हमें कोई काल की गणना वहां नहीं होती। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ कि बुद्धि ही काल को फैलाती है। ऐसे समझिए आप कि ये कैलेंडर जितने होते हैं, अब ये बात दूसरी है कि सबने अंग्रेजी कैलेंडर को मान लिया, लेकिन कितने प्रकार के नव वर्ष होते हैं। आप यहाँ मुंबई में भी मनाते हैं, तो एक नव वर्ष चैत्र में मनाते हैं, एक पटेटी मनाते हैं, एक पहली जनवरी को मनाते हैं, कितने मनाते हैं, है ना। गुजरातियों का अलग दीपावली के दूसरे दिन मनाते हैं। तो इतने नव वर्ष मनाते हैं, उसी से पता चल रहा है कि काल कल्पित है, मनुष्य की बुद्धि की कल्पना है। कब किसका कब संवत्सर प्रारंभ होगा, तो भारत वर्ष में ही पंजाबियों का नव वर्ष अलग होगा, बंगालियों का अलग होगा, गुजरातियों का अलग होगा, उत्तर भारतीयों का अलग होगा, दक्षिण भारतीयों का अलग होगा। तो इतने नव वर्ष क्यों है? पारसी भाइयों का अलग होगा, इस्लाम का अलग होगा, सबका अलग अलग है। तो इसका अर्थ यही है कि काल यह मनुष्य की बुद्धि की एक कल्पना है। जब मनुष्य की बुद्धि को आप कहते हैं तो आप सीधे सीधे अपनी बुद्धि को ले लेना, क्योंकि आपकी बुद्धि में भी वह वे संस्कार डाले गए हैं, ये द्वैत के संस्कार डाले गए। पशु पक्षी को नहीं मालूम होता, और इसलिए महाराज उनको बड़ा आराम होता है। क्या आराम होता है? उनको जन्मदिन नहीं मनाना पड़ता, बर्थडे पार्टी नहीं करनी पड़ती उनको, वो क्या मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनानी पड़ती, ये सबसे वो मुक्त होते हैं। तो और यहाँ तो हमने इतना कंडीशन्ड कर दिया, इतने सारे व्यवहार थोप दिए और उसी में हमारी बुद्धि दब गई। और जब इस व्यवहार से हमारी बुद्धि दब गई तो हम जो जब आत्म तत्व का विचार करते हैं तो वही व्यवहार से प्रभावित बुद्धि से ही हम आत्म तत्व का विचार करते हैं। तो हम कहते हैं, जो कल कार्य कारण की बात अंत में आई थी, किसी ने प्रश्न पूछा था कि समझ थोड़ा उसको विस्तार कर दे, और एक किसी ने कहा कि थोड़ा समझा के ठीक से बताए, हम लोग बहुत जल्दी समझ नहीं पाते। बोले यद्यपि हम 16-17 वर्ष से आते हैं पर समझ नहीं पाते। तो क्या होता है कि जब यह प्रश्न उठता है, आप इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि यह सृष्टि कब हुई, यह सृष्टि कैसे हुई, यह सृष्टि कहाँ हुई, कब हुई, अर्थात किस काल में हुई, तो वैज्ञानिक लोग आपको गणना लगा लगा के बताएंगे। कल्पित, आप बिल्कुल निश्चित समझ लेना, वो कल्पित ही गणना बताएंगे। तो कल्पित ही वो करोड़ वर्ष, इतने लाख वर्ष या जो भी वो बता देंगे, और एक दूसरे को काटते रहेंगे। और हमारे देश का जो इतिहास है वो तो उनकी बुद्धि स्वीकार ही नहीं कर पाती। हमारे जो रामायण महाभारत इतिहास है तो ये इतिहास को तो उनकी बुद्धि स्वीकार ही नहीं कर पाती। जब स्थूल प्रमाण मिलते हैं तब वो मानते हैं, नहीं तो बोलते हैं इनकी सब कल्पना है, माइथोलॉजी है, तो ऐसे वो कल्पना करके छोड़ देते हैं। तो सृष्टि कब हुई एक प्रश्न है, और सृष्टि कहाँ हुई, कब हुई, अर्थात काल आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है, और सृष्टि कहाँ हुई अर्थात देश बैठा हुआ है, अंतरदेश में हुई, बहिर्देश में हुई, कहाँ सृष्टि हुई। बौद्धों के तो चार मत हो गए इसी को लेकर, बाह्यार्थवादी, अंतरार्थवादी, उभयार्थवादी, अनुभयार्थवादी। तो कहाँ हुई, तब आपकी बुद्धि में देश की कल्पना बैठी हुई है, और कैसे हुई, तब आपकी बुद्धि में कार्य कारणता बैठी हुई है। जब आप कहते हैं सृष्टि कैसे हुई, तो आपकी बुद्धि में कार्य कारणता अर्थात द्रव्य वस्तु, क्योंकि आप देखते हैं कि बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, तो मिट्टी से घड़ा बनाया जाता है, सुवर्ण से जेवर बनाया जाता है, तो ये सब जो आप देखते हैं, माता पिता के संयोग से शिशु की उत्पत्ति होती है, ये सब जो आप देखते हैं उसके कारण आपकी बुद्धि में यह बैठा रहता है कि सृष्टि कैसे हुई। तो जैसे ये प्रश्न पूछता है तो वैसे ही जो समझदार होते हैं वो जान जाते हैं कि अरे बाबा, इसकी बुद्धि में तो अभी ये कार्य कारण देश काल सब बैठा हुआ है, इससे प्रभावित है इसकी बुद्धि। और इसलिए जब उनको ये बताया जाता है कि इससे इसको छोड़कर तब तुम विचार करो, तब तुम चैतन्य को प्राप्त करोगे, तो उन्हें जल्दी से समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सब प्रभाव है हमारी बुद्धि में, वासना है हमारी बुद्धि में, व्यवहार पक्ष मुख्य रूप से बैठा है हमारी बुद्धि में, उसको हम गौण नहीं कर पाते हैं। या तो आपकी बुद्धि विषयाकार न होती हो, या तो आपकी बुद्धि अपने आत्म तत्व में, आत्म वस्तु में एक होकर रहती हो, बहुत बढ़िया बात है, वो आत्म वस्तु में एक होकर रहे तो उससे बढ़िया और कोई बात नहीं है, और अर्थात अपने को पृथक दिखाए ही नहीं, और पृथक दिखाए तो निर्विषय रहे। अब बहुत कठिन बात नहीं बता रहे, कठिन लग रही है, लेकिन शास्त्र जानते हैं, हमारे वेद भगवान भी जानते हैं कि मनुष्य के लिए क्या संभव है क्या संभव नहीं है, इसलिए क्रमशः ले जाते। तो कहा तीसरी बात क्या है, तो कहा कि मान लो आपकी बुद्धि में विषय आए भी, मान लो आया है विषय, तो बुद्धि में यदि विषय आता भी है तो उसके प्रति महत्व बुद्धि न रहे। यदि उसके प्रति आप महत्व रखेंगे तो फंसेंगे, क्योंकि महत्व बुद्धि तब होती है जब सत्यत्व बुद्धि होती है उसके पीछे, और जब सत्यत्व पहले महत्व बुद्धि को काटा जाता है, शास्त्रों की यह शैली, पहले वो महत्व बुद्धि के लिए महत्व बुद्धि को काट देते हैं। इसलिए जगत के मिथ्यात्व का विवेचन किया जाता है, वैराग्य की महत्ता बताई जाती है, क्योंकि राग द्वेष होगा, आप स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में आपको एक वस्तु से राग है और एक वस्तु से द्वेष है, तो आप स्वप्न को स्वप्न कभी नहीं समझ पाएंगे, जागने पर भी आप थोड़ी देर उससे प्रभावित रहेंगे, किंतु यदि स्वप्न देखते समय ही आपने यह समझ लिया आप राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, तो आपको वह स्वप्न हल्का हो जाएगा, आप कभी भय से, वैसे भी मनुष्य के जीवन में असुरक्षा की भावना और भय, एक ही कह लो दोनों को, और लोभ, दो वृत्तियां बहुत काम करती हैं, एक तो लोभ काम करता रहता है और एक भय अर्थात असुरक्षा की भावना, जितना पैसा वैसा सब इकट्ठा करते हैं, देहात्म बुद्धि, देह में बुद्धि होती है, और फिर आप ये समझते हैं कि अरे कहीं इसमें रोग लग गया तो, कहीं बुढ़ापा आ गया तो, करके इकट्ठा करते जाते हैं, बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। पहले अपने संतानों को दे देते थे, अब नहीं देते हैं, बोलते हैं अब संतान संभालती नहीं है, एक दूसरे में विश्वास घट गया है, श्रद्धा का अभाव हो गया है, न्यूनता आ गई है, तो ये क्या है, हमारी जो प्रणाली थी, जो शैली थी, उसका ह्रास हुआ है। आप इसको थोड़ा सोचना, क्योंकि हम ये तो कह देते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, पहले किसी समय में आप कहेंगे कि उस पक्ष को आप मत लाओ, वो तो चला गया, हमारे गुरुदेव कहते हैं शायरी मर गई अब जिंदा नहीं होगी यारों, याद कर करके उसे दिल न कुढ़ाना हरगिज। तो वो क्या है, कब तो कहा कि ये पहले की बात है, तो पहले क्या था, कहा समुद्र पार मत जाना, अब फुर्र उड़ते हम लोग पहुंच जाते हैं, तो कहते थे समुद्र पार नहीं जाना, क्यों कहते थे? क्योंकि इस देश के एक संस्कार थे, इस देश में संस्कारों की पवित्रता पर ध्यान दिया जाता था, और वह जो संस्कारों की पवित्रता था, कुटुंब की भावना, अब कुटुंब की भावना को ही संकीर्ण कर दिया, और वहां तो वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा कुटुंब है। तो जब हम संयुक्त कुटुंब में ही नहीं रह सकते तो वसुधा कुटुंब में कहां जाएंगे? तो इतनी संकीर्णता दे दी गई और कहा कि हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हृदय संकीर्ण हो गए, हृदय हमारे, क्योंकि संस्कारों पर चोट पड़ी है। आप पीछे मुड़कर देखना और विचार करना कि संस्कारों पर कितनी चोट पड़ी है, धर्म पर कितनी चोट पड़ी है और कितना ह्रास हुआ है। आज से 60-70 वर्ष पूर्व एक कोई भी सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति ये कहता था कि हम रिश्वत नहीं ले सकते क्योंकि हम बाल बच्चेदार हैं, क्योंकि बुद्धि की पवित्रता पर विश्वास था। यदि हम अशुद्ध अन्न घर में लाएंगे तो हमारे बाल बच्चों की बुद्धि बिगड़ेगी। और वही उसी देश में आज का व्यक्ति बोलता है कि हम रिश्वत नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा क्योंकि हम बाल बच्चेदार हैं। वाक्य वही है, बाल बच्चेदार की ही दुहाई है, आई हैव गॉट ए फैमिली, आई कैन नॉट डू, बस। क्योंकि धर्म चला गया, त्याग की भावना चली गई, जो सब था हमारे देश का। तो ये बात आपको सुना रहे थे कि आप जैसे ये विवेकी जो है धीमान, कश्चित धीरा, तो ये जो कश्चित धीरा है, ये धीमान जो शब्द है, तो इसके जीवन में पहले धर्म अधर्म का विवेक है, एक बात। फिर ध्येय अध्येय का विवेक है, किसका ध्यान करना चाहिए और किसका ध्यान नहीं करना चाहिए। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, विषयों का ध्यान करने से आसक्ति होगी, आसक्ति से काम क्रोध लोभ मोह सब आएंगे। तो वो कहा, और तो ध्यान किसका करना चाहिए? तो कहा ऐसे का ध्यान करो जो अविनाशी है, साकार हो निराकार हो। तो ध्यान और अध्ययन, ध्येय और अध्येय का भी विवेक उसके जीवन में रहा है। और तीसरा क्या, ध्येय और अज्ञेय का भी विवेक अब वह जानता है। तो आपको ये कह रहे थे कि बुद्धि, ये धीमान, यह विवेकी, इसकी बुद्धि या तो परमात्मा से एक होकर रहे अथवा ऐसी स्थिति नहीं रहती तो बुद्धि निर्विषय रहे, और निर्विषय नहीं सविषय है तो महत्व बुद्धि ना हो, तब आप कहा ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो जाएंगे। अब यहाँ कहा कि ये इंद्रियों की बात पुनः क्यों लाएगी? तो कहा कि जब ब्रह्म ज्ञान के लिए मनुष्य प्रयत्न करने लगता है, ये आप लोग शास्त्रों में सुनते होंगे, तब देवता विघ्न करते हैं, सुनते होंगे कि देवता तब विघ्न डालते हैं। तो क्या विघ्न क्या है, देवताओं के द्वारा विघ्न क्या किया गया? तो क्या प्रत्येक इंद्रिय के एक एक देवता है, नेत्र के सूर्य देवता, कान के दिग देवता, नासिका के अश्विनी कुमार इत्यादि, ये सब देवता हैं। तो ये जो देवता है, ये कहा विघ्न डालते हैं, तो क्या विघ्न डालते हैं? देवता, देवता से आप बड़े हैं, आप आत्मदेव हैं, वो क्या विघ्न डालेंगे? आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, आप आत्मदेव हैं। तो कहा कि इंद्रिय पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाना यही विघ्न है, इसलिए कहा कि ये जो महत्व बुद्धि ना हो, भले विषय आए, हम हमेशा हमारी बुद्धि परमात्मा से एक होकर रहे, बहुत अच्छी बात है। और या तो हमारा चित्त जब खाली हो, खाली यहाँ खानी बोल रहे हैं, अर्थात शरीर में कुछ छेद बना दिए, खानी माने खा अर्थात आकाश, पोल, कुछ पोल बना दिए, नाक की एक पोल, कान की एक पोल, आंख की एक पोल, पोल पोल समझते ना, तो पोलापन, तो ये बना दिया, इसलिए इनको बोलते हैं खानी। तो ये खानी है, ये इंद्रियां, और इनको बना के स्वयंभू ने, ईश्वर ने इनको हिंसित कर दिया, ये बाहर देखती हैं। लेकिन ये ला ला के विषयों को और हमारे अंदर डालती रहती हैं, डालती रहती हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार यहाँ कहते हैं परांची पराग अंचंती गच्छंती, अर्थात हमेशा बाहर की ओर जाती रहती हैं, गमन करती हैं। तो ये जो बाहर जाने वाली हैं, इनको बोलते हैं परांची, ये बाहर जाती रहती हैं। और खा, इससे सब ये खानी इंद्रियां, ये कहा गया है। तो ये बहिर्मुख होती हैं और वहां से वो लाला के विषयों को डालती रहती हैं। तो भगवान स्वयंभू जो परमात्मा है, उन्होंने कहा तुम बाहर का ही व्यापार संभालो, घर में आने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना जो स्वामी है, जिससे तुम्हें शक्ति मिलती है, जिससे तुम्हें चैतन्य मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसकी ओर तो देखती नहीं हो, उस परमात्मा की ओर, उस आत्मदेव की ओर तुम देखती नहीं हो। तो इसलिए तुम बाहर ही बाहर रहो, और वो स्वयंभू जो परमात्मा है वो स्वतंत्र है, वो परतंत्र नहीं रहता है, तुम कहा कि इनके पीछे जाओ। तो ये परमात्मा का ऐसा हो गया। तो इंद्रियों के पीछे जो बैठा हुआ है, इंद्रियों के पीछे बैठा हुआ है और इंद्रियों को प्रकाशित करता है, इंद्रियों को जो शक्ति देता है, इंद्रियों के झरोखे से जो झांकने वाला है, अगर वो झांकने वाला नहीं हो तो इंद्रियां किस काम की। जैसे झांकने वाला चिदाभास, वो जब निकल जाता है तब वो शरीर मुर्दा पड़ा रहता, आंख होती है, नाक होते हैं, कान होते, लेकिन कुछ काम के नहीं। हाँ, इनको तो जला दो, भस्म कर दो, क्योंकि वो कुछ काम के नहीं है। तो वो जो इंद्रियों को रोशन करने वाला है, और इंद्रियां जिस चिराकाश में दिखती हैं, इंद्रियां दिखती हैं, क्योंकि जब आप स्वप्न देखते हैं तो वहां भी इंद्रियां काम करती हैं। तो ये जो स्थूल इंद्रियां हैं, ये तो सो गई होती हैं। फिर वहां कौन सी इंद्रियां होती हैं? सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। तो इंद्रियों के ये गोलक हैं, जो ये हम लोग देखते हैं आंख नाक कान आदि, ये गोलक हैं, ऑफिस हैं, इसके थ्रू वो काम करती हैं, इसके द्वारा, इसके माध्यम से वो काम करती हैं। किंतु स्वप्न में भी इंद्रियां होती हैं, और स्वप्न में वहां इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस का गंध का अनुभव करती हैं, किंतु किसमें? वो चिदाकाश में ही दिखती हैं, ऐसे अर्थात आपके चैतन्य में वो दिखती हैं। तो उस चिदाकाश का विचार है यहां। तो जो आपका प्रत्येक चैतन्य है, आत्मदेव है, यह जो आत्मदेव है, यही संपूर्ण इंद्रियों को, विषयों को देखता है, संपूर्ण इंद्रियों को देखता है, संपूर्ण देवता, संपूर्ण वृत्तियां, मनोवृत्तियां, देवता उनको, उनके अनुग्राहक जो देवता होते हैं, आंख नाक कान आदि के अनुग्राहक देवता, और संपूर्ण जो वृत्तियां हैं, इनके सबके उपद्रवों को यह चिदाकाश, यह आत्मदेव, यह परमात्मा देखता है, आप देखते हैं। तो इनका क्या है? आप विषय, जो विषय दिखते हैं वो इंद्रियां, उनके देवता और उनकी वृत्तियां, ये अंदर तक चलिए, ये सब क्या है? ये वृत्तियां उठती हैं, जाती हैं, उठती हैं, जाती हैं। तो ये सब क्या है? इस सब को बोलते हैं उपद्रव। और आत्मदेव क्या है? कहा निरुपप्लव है, उपद्रव से रहित है, निरुपद्रव है। तो इन सब का एक उपद्रव चलता रहता है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि भाई, हम तुमको, जो धीर है वो इस बात को समझ गया कि हम आत्म तत्व को देखेंगे, इनके द्वारा हमें विषयों में गमन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? तो अब दूसरी बात, इंद्रियों से जो आप विषय ग्रहण करते हैं, और उन विषयों में यदि आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रयत्न करते हैं, ठीक है? दूसरी एक बात बता, तो जो आप प्रयत्न करते हैं इंद्रियों के द्वारा, मतलब विषयों के प्रति, उनको भी इंद्रियां कहते हैं। इसलिए ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेन्द्रियां, तो उनको भी इंद्रियां ही कहते हैं। तो इंद्रियों के द्वारा जो कर्म करने वाला है, कर्मेन्द्रियों से तादात्म्य करके बैठता है, उसे बोलते हैं कर्ता, उसे कहते हैं कर्ता। आप कर्ता नहीं है, आप तो अकर्ता है, आप तो अभोक्ता है, पर इंद्रियों से, कर्मेन्द्रियों के द्वारा जो कर्म करता है, उसमें कुछ बदलना चाहता है, बनाना चाहता है, बिगाड़ना चाहता है, तो उसको बोलते हैं कर्ता। तो ये कर्ता, तो ये आपका कर्म, आगे के मंत्र में ये बात आएगी, आपका जो कर्म है या धर्म कह लो, कर्म, उपासना और योग, इसमें आप स्वतंत्र हैं। आप कर्म करें ना करें, अन्यथा करें, तो आप स्वतंत्र हैं। तो इसको बोलते हैं कर्म, उपासना और योग, इसे बोलते हैं कर्तृतंत्र, अर्थात कर्ता का तंत्र है। तो इनका कर्म, उपासना और योग का जो ज्ञान है, वह कर्ता के अधीन है, अर्थात कर्ता चाहे तो करे, नहीं तो नहीं करे। प्राणायाम आप करते हैं, तो कहा कि हम बाईं नासिका से पहले सांस लेते हैं, क्या बोलते हैं, पूरक, पूरक करते हैं, और दाहिने से रेचक करते हैं। कोई कहे नहीं, हम तो दाहिने से पूरक करते हैं और बाएं से रेचक करते हैं, स्वतंत्र है आप। कहा कि नहीं, जो इसको, जिसको ये रोग होता है उसको बाएं से करना चाहिए, हाई बीपी है तो बाएं से करो और लो बीपी है तो दाएं से करो, तो भिन्नता हो गई ना, पृथकता हो गई, तो आप उसमें स्वतंत्र हैं। उसी प्रकार से आपका जो सब, आप कर्ता के अधीन है, तो आपका जो संप्रदायवाद है, आग्रह है, दुराग्रह है, तो वह वहां सब क्या है, कर्तृतंत्र है। लेकिन जब आप ज्ञान के विभाग में आते हैं, ये क्यों यहाँ पर निषेध कर रहे हैं इंद्रियों का, तो जब आप ज्ञान के विभाग में आते हैं, तब आपका संप्रदायवाद, आपका आग्रह दुराग्रह बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर वस्तु तंत्र आ गया। वस्तु जैसी है, उसको ये पीला फूल है, तो आप कहें कि नहीं, हम तो इस पीले फूल को नीला देखेंगे, तो आप इसमें स्वतंत्र नहीं है, आपकी आंखें उसको पीला ही दिखाएंगी, आपकी ज्ञानेन्द्रियां उसको पीला ही दिखाएंगी, आप इसमें स्वतंत्र नहीं है। आप कहें कि हम इस पीले, हम इसको नीला देखते हैं, तो लोग कहेंगे आंखों में कुछ गड़बड़ी है, डॉक्टर को दिखाओ, अथवा आंख की गड़बड़ी नहीं तो कुछ मानसिक रोग, उल्टा सीधा देखता है। तो इसलिए जो ज्ञान का विभाग है, वह वस्तु तंत्र है, वह वस्तु के अधीन है, और आप कहेंगे कि नहीं, हम तो ऐसा ही जानेंगे परमात्मा को। यदि आप कहते हैं, देखो हम लोग देश काल वस्तु का माने ईश्वर की सर्वव्यापकता इत्यादि सबका निषेध करते हैं, तो जब इस ईश्वर की सर्वव्यापकता, उसकी नित्यता, उसकी कारणता, वहां तक निषेध करते हैं और बुद्धि को उस सूक्ष्म में ले जाते हैं, और जो स्थूल में बैठकर